Nandico. वृंदावन में जाकर के अप्रकट स्थिति, इतनी मधुर लीलाओं को हमने जगत में प्रवाहित किया, लोग इसको कैसे पान करके इसमें डूबेंगे? जगत में बहुत कम लोग हैं जो इनको समझें, बहुत रेयर हैं। कोटिस्वपि महामुनि भी, ये तो नारायण के लिए कहा गया, कृष्ण के लिए क्या कहा जाए? करोड़ों करोड़ों में से कोई एक होता है, तो करोड़ों करोड़ों नारायण के भक्तों में कोई एक कृष्ण भक्त, उन करोड़ों करोड़ों में से कोई एक बिरला ब्रज का भक्त, और उन लोगों में से करोड़ों करोड़ों में से कोई वात्सल्य रस का एक, और उन करोड़ों करोड़ों में से कोई एक बिरला महाप्रभु जिसको देने के लिए है वो चीज है, कैसे दिया जाए? कहा जी ऐसे होगा नहीं। राधा जी को मनाया, तुम भी हमारे साथ में ये? कृष्ण को उन्होंने बना दिया रमण, राधा रमण, यही है राम। प्रकट इसी के माध्यम से उन्होंने वो उच्च कोटि का जो प्रेम है, जो ब्रह्मा शंकर और दूसरों के लिए नारद के लिए भी दुर्लभ है, इसको नाम के माध्यम से ये दिया। इसलिए इस नाम को साधारण मत समझिए, इसलिए इस नाम को कीजिए। लो जल्दी करो, जीवन भर इस नाम को हम भूलेंगे मत, हरे राम से मत आरंभ करेंगे ना तो सफल कट जाए। इसमें एक विशेषता है, कैसे करेंगे? हरे कृष्ण हरे कृष्ण और हरे राम आओ सब पीछे, नहीं तो उसमें गड़बड़ हो जाए। नारद ऋषि के लिए, यहां तक कि उद्धव के लिए भी असंभव था, दुर्लभ था। वह प्रेम गली गली में वितरण किया, मद्यपों को वितरण कर दिया, मुसलमान इत्यादि को भी, हरिदास ठाकुर इत्यादि के माध्यम से सर्वत्र उन्होंने प्रचार किया। बाद भालुओं को नचा दिया इस कृष्ण के प्रेम में, इसी नाम के माध्यम से। यह नाम को और कुछ नहीं, राधा और कृष्ण का स्वयं ये नाम है, वो स्वयं ही है। इसे सब कुछ कीजिए किंतु इस नाम को नहीं भूलना है। अब हम लोग चलते हैं लीला कथा पर, आते हैं। लीला कथा का भी प्राण है ये हरिनाम, ऐसा भी समझिए। लीला कथा और हरिनाम में कोई भी अंतर नहीं है, एक ही चीज है, इसको भी समझिए। अब खूब ध्यान से भगवान की कथाओं को श्रवण कीजिए। यद्यपि राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है तत्वतः, श्रीनाथे जानकी नाथे अभेद परमात्मनि तथापि मत सर्वस्व राम कमल लोचन। हनुमान जी ये कहते हैं, श्रीनाथे और जानकी नाथे, कृष्ण में श्री माने राधा, राधिका नाथे और जानकी नाथे अभेद परमात्मा, तत्व की दृष्टि से दोनों एक हैं, किंतु रसगत वैचित्र है। रूप गोस्वामी ने भी ऐसा, रसेन उत्कृष्यते कृष्ण रूप में सा रसस्थिति। राम नारायण कृष्ण परमात्मा ये सब एक तत्व हैं, किंतु रस की दृष्टि से कृष्ण ही स्वयं भगवान है। कृष्ण ही राम के रूप में जो लीलाएं की अपने अवतीर्ण होने से पहले, द्वापर लोक के पहले त्रेता युग में, वो कृष्ण ने ही लीला की। रामचरित। पहले मर्यादा सीखो, पिता के प्रति, माता के प्रति, स्त्री के प्रति, पति के प्रति, पुत्र के प्रति, पिता के प्रति, गुरु के प्रति जो मर्यादा है इसको सीखो। जगत में रहने के लिए शास्त्र में जो वेद की मर्यादाएं हैं उनको पहले सीखो, तब कृष्ण लीला में प्रवेश करना। मर्यादा का पहले से उल्लंघन करेंगे कृष्ण लीला में हम प्रवेश नहीं करते। इसलिए मर्यादा की शिक्षा देने के लिए कृष्ण ने ही राम के रूप में अवतरण लिया, अवतार लिए। मैं सब लीलाओं का वर्णन नहीं करूंगा क्योंकि सभी लोग जानते हैं। इसमें से विशेष विशेष जो लीलाएं हैं, जो कि तत्वतः जो लीलाएं हैं जिनके संबंध में हम थोड़ा सा पूरा रूप से नहीं जानते हैं, उसको मैं स्पष्टीकरण करते हुए चलूंगा, बतलाऊंगा। सभी लोग जानते हैं महाराज दशरथ अब बूढ़े हो गए, उनका तीसरा काल आ गया, वो प्रौढ़ हो गए, बच्चा पैदा नहीं हुआ। 360 रानियों से उन्होंने शादी की एक एक करके। अब उनका जो तीसरापन है वो आया, तीसरा वृद्धावस्था जैसे। उनकी उम्र कितनी होगी उस समय? काफी उम्र थी। 360 रानियों से एक एक से विवाह करते गए किंतु किसी को भी पुत्र नहीं हुआ। बड़े दुखी हो गए, वृद्धावस्था आ गई, पुत्र तो हुआ नहीं। मन लगाने के लिए घर में राजभवन उनको काटता था, कोई बच्चा रो नहीं रहा, कोई हमारे घर में बच्चा खेलता नहीं है, हमारे पितरों का पिंड कैसे होगा, लौकिक रीति से ये सब सोचने लगे। मेरा जीवन व्यर्थ गया, बहुत मैं पापी था इसलिए पुत्र नहीं, जैसा कि लोग सोचते हैं। एक दिन मृगया करने के लिए चलते चलते काय काय देश में पहुंचे। वहां पर कैकेयी नाम के राजा थे, उनके नाम से यह राज्य था, उन्हीं की बेटी थी कैकेयी। उस समय कैकेयी की उम्र 16 वर्ष की थी, अब वो धीरे धीरे किशोर हो रही थी। उसी समय महाराज दशरथ मन को बहलाने के लिए मर्गिया करते करते बहुत दूर पहुंच गए और कैकेयी देश में अपने मित्र कैकेयी राजा के पास में गए। महाराज ने कहा, जे बेटी, हमारे मित्र और वृद्ध जैसे अब ये प्रौढ़ हैं, ये महाराज दशरथ आए हैं, ये कोसला के राजा हैं, इनकी तुम सेवा करना, बस उनका खाना पीना और पानी इत्यादि सब प्रकार की सेवा, पलंग इत्यादि लगा देना, सब प्रकार की सेवा उसने किशोरी लड़की ने की, अभी विवाह नहीं हुआ था, उसने ऐसी सेवा की और इतनी गुणवती थी और इतनी रूपवती थी जो कि विश्व की एक मानी हुई सुंदरी थी, और रूपवती और गुणवती, बड़ी शीलवती भी थी। उसने जब सेवा किया तो ये बड़े प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने के बाद में अब जाने का समय हुआ तो महाराज से ये मिले। महाराज ने कहा, जी आपकी क्या सेवा करूं? उन्हें, मैं ऐसे ही मैं संतुष्ट हूं, मेरी आपकी लड़की ने मेरी बहुत सेवा की, तो मैं ये चाहता हूं कि आप यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो उस लड़की को हमको दे दिया, मैं शादी करूंगा। तो वो कुछ चिंता करने लगे, चिंता करके बोले, मैं लड़की किससे शादी करूंगा आपसे, किंतु एक वचन देना पड़ेगा। कहिए क्या वचन? इसका जो लड़का होगा वही राजा होगा आपके राज्य का। महाराज दशरथ आनंद से भर गए, क्योंकि हमारे तो कौशल्या और कौन सुमित्रा और हजारों रानियां हैं, किसी को पुत्र नहीं हुआ है, यदि इसी बहाने यदि ये पुत्र हो गया तो वही तो राजगद्दी का अधिकारी होगा, दूसरा तो कोई है नहीं है, तो इसलिए ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो सोना में सुगंध बात हो गई, इसलिए मैं इसको कबूल करता हूं, स्वीकार करता हूं, ठीक है, यदि इससे कोई पुत्र हुआ तो वही राज्य का अधिकारी होगा, कह दिया। इसके बाद में बड़े अच्छी तरह से शादी हुई और उस लड़की को लेकर के ये यहां पर अयोध्या में आए। इससे भी लड़का नहीं हुआ, बस वशिष्ठ जी के शरण में गए, उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए सिंह ऋषि का वाहन किया और वो आकर के पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ, ये सब आप लोग जानते हैं। अब पुत्रेष्टि होने यज्ञ पर अग्नि देव प्रकट होकर के और चरु ले आए यज्ञ का अवशिष्ट भाग और कहा जी अपनी रानियों में से जिसको चाहते हो एक को खिला दो। उन्होंने यह मछलू का करके ले लिए और उसको उन्हें सोचा जो किसको दूं। कौशल्या बड़ी रानी है, बड़ी सुशील है, धर्मात्मा है, राजा की सेवा भी करती है और उसके बाद में सुमित्रा जो आई है वो बड़ी गुणी है, वो कौशल्या की भी सेवा करती है, महाराज दशरथ की भी सेवा, उन्होंने इसका मन जीत लिया। और जो छोटी रानी आई ये तो और सुशील और गुणी और सबसे सुंदरी है, अभी छोटी सी है ना, राजा उसके वशीभूत हो गए हैं। आप किसको दी तीनों में से, कभी हाथ लपकता है कि ये उसको दे कैकई को दे, कभी होता कि नहीं ये मर्यादा की हानि होगी, ये उसको ही देना चाहिए। अंत में सोच साच करके कुछ विचार करके उन्होंने उसका आधा दो भाग कर दिया और एक भाग दे दिया, आधा भाग जो कौशल्या था, अब रह गया आधा, आधा का भी भाग किया और उसने देखा जो नीति तो यही कहती है कि दूसरी प्रिय स्त्री को दिया जाए, उन्होंने दे दिया सुमित्रा जी को, वो दूसरी है ना इसलिए, अब रह गया कितना, आधा का आधा कर दिया, अब आधा का आधा दे करके आधा किसको दिया, कैकई को दिया, और जो आधा का जो आधा फिर बच गया 1/8 वो फिर दे दिया किसको, सुमित्रा जी। इसलिए कौशल्या से राम हुए परिपूर्ण ब्रह्म और दूसरे जो दे दिया आधा का आधा उसे हुए लक्ष्मण जी, राम के सबसे अधिक श्रेष्ठ भक्त माने उनके सेवक धरणीधर वही बलदेव प्रभु जी हैं या नित्यानंद प्रभु जी हैं। और फिर जो आधा का आधा का आधा दिया वो हुए भरत महाराज और उसका जो जो बाकी रह गया वो दे दिया वो हो गए शत्रुघ्न जी। इसलिए राम लक्ष्मण की जोड़ी बनी और भरत और शत्रुघ्न की जोड़ी बनी, उन दोनों में प्रेम, इस तरह से चलने लगे। कुछ दिनों के बाद में जब बड़े हुए तो वो स्नान करने गए, रावण ने देखा ये हमारा काल तो जन्म ले लिया, ये तो हमें मारेगा, इसलिए वो घड़ियाल बन करके मगर बन करके सरजू नदी में आ गया। रामचंद्र जी का पैर पकड़ के खींचने लगा, रामचंद्र जी ने धनुष ऐसा मारा, एक घाट तिनका लिया उस पर तिनका का ही बाण मारा जो वहां से भी एकदम जाकर के गिरा कहां, लंका में, बच गया किसी प्रकार से। राम का यह प्रताप देख करके उसके अंदर में भीतर में डर तो हो गया, था कौन ये जय विजय थे रावण और कुंभकर्ण। ऋषि के हिसाब से माने चतुर्सन के हिसाब से ये आए हैं, वो भी भगवान की सेवा करने के लिए आए हैं, किस रूप में हमने ये बहुत बार बतलाया है। इसके बाद में ये लोग और कुछ बड़े हुए, विश्वामित्र जी आए, कह जी आपने राम और लक्ष्मण को हमको दे दीजिए हमारे यज्ञ की रक्षा के लिए, कह जी हमारा प्राण ले लो, हमारी सेना ले लो, किंतु इनको मत दो, हम नहीं देंगे। बहुत समझाया, नहीं माने, वशिष्ठ जी आए बला बोले जिसे दे दीजिए, नहीं तो आपका बहुत ही अकल्याण होगा और देने में ही आपको बहुत से भलाई है। समझाने से दिया था, किंतु इस बार उन्होंने क्या किया, भरत की और शत्रुघ्न जी को दे दिया, लेकर के चले, जबकि वन में पहुंचे सिद्धाश्रम के पास में, तो वहां से दो रास्ता जाता था, एक बहुत निकट का और एक बहुत दूर का, घूम घाम करके। जो निकट वाला था वो असुरों से दैत्यों से भरा हुआ बड़ा बिहड़ था, बड़ा भयानक। उन्होंने राम लक्ष्मण से पूछा, भाई जल्दी वाला रास्ता चलेगा सीधा वाला ना कि देर से, किंतु वो निष्कंटक है और इसमें कंटक है, बहुत से बड़े बड़े असुर। उन्होंने कहा ये दूर वाला रास्ता ही ठीक है, निष्कंटक पहुंच जाएंगे। कहा ये राम लक्ष्मण नहीं हो सकते, लेकर के लौट गए। महाराज से कहा जी हमको तुमने धोखा दिया, ये तो राम लक्ष्मण कभी हो नहीं सकते। आप बड़े दुखी हुए, फिर वशिष्ठ जी के कहने से राम लक्ष्मण जी को दिया। फिर जब राम लक्ष्मण ये लेकर के आ रहे तो पूछा, अच्छा ये सीधा रास्ता निकट वाला चलेगा या दूर वाला? कहे निकट वाला जल्दी से अच्छा है, अरे इसमें बड़े असुर हैं, कोई भी बात नहीं। आगे उससे बड़े सबसे पहले कृष्ण ने मारा था किसको, उतना को। इन्होंने सबसे पहले आरंभ किया किससे,
ताड़ता हो। स्त्री बद से ही दोनों चले, उनको मारने के लिए आई और ऐसे बाण मारा कि वो गिर गई। उसके दो पुत्र थे, मारिच और सुबाहु। यही मारिच पहले पीछे से बना है सोने का हिरण सीता जी को चोरी करवाने के लिए। उस समय ये भी आया उनको मारने के लिए और सुबाहु भी आया। सुबाहु को तो मारा तो वो तो साथ ही साथ मर गया, और जितने उसके अनुचर थे सबको मारा। और इसको एक ऐसा बाण मारा जो एकदम लंका में जाकर के रावण के सामने गिरा। वहां किस लिए छोड़ दिया? हाँ, कुछ लीलाएं बाकी है ना, रावण को भी तो मरना है, सीता जी की चोरी नहीं होगी, इसलिए उसको छोड़ करके मार दिया। अब वो राम का भीतर भीतर भक्त हो गया, उनसे डरने लग गया। इसी बीच में वहां से यज्ञ समाप्त करके धीरे धीरे अहल्या जी मिली, उनका उद्धार किया, पाषाणी उनको साप मुक्त करके सुंदर नारी के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। फिर वहां से जनकपुरी में वो ले गए विश्वामित्र इत्यादि ऋषि लोग। शाम को वहीं पर ठहरे महाराज जनक अपने पुरोहित, क्या नाम, सतानंद जी को, वही अहिल्या के पुत्र और गौतम के पुत्र इनके पुरोहित थे, उनको लेकर के आए। इन्होंने बतलाया ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं भरत और शत्रुघ्न, विश्वामित्र जी के साथ में धनुष यज्ञ देखने के लिए आए। रात में बड़ी आवभगत कर रख दिया। सवेरा हुआ, रामचंद्र जी किस प्रकार से अपने गुरु की सेवा करते हैं, परब्रह्म होकर के गुरु जी से पहले उठे और गुरु जी के सो जाने के बाद में रात में सोते हैं, उनकी सारी व्यवस्थाएं करते हैं, पुष्प इत्यादि चयन करना, उनके कपड़े धोना, उनके कपड़े सुखाना, उनको सब चीज की व्यवस्था करते हैं। हम लोग गुरु जी के सोने के पहले ही सो जाएंगे, सेवा से कोई संबंध नहीं। और गुरु जी उठेंगे उसके पहले, उसके एक घंटे के बाद गुरु जी उठेंगे 3 बजे, और हम उठेंगे कब, 5 बजे उठेंगे। बड़ी मुश्किल से आरती के समय में भी आलस्य आएगा तो उसमें भी नहीं आएंगे, डर के मारे यदि आ गए। इसलिए गुरु सेवा कैसे होनी चाहिए, विषम में इन गौरव सेवा, अंततः विधि मर्यादा के साथ भी करो, यदि वैसा नहीं होता है तो। बिन गुरु भवन धी तरह न कोई, जो बिरिंग के शंकर सम होई, ब्रह्मा और शंकर के समान भी कोई ज्ञानी हो तो बिना गुरु के भव सागर नहीं तर सकते, ये गारंटी है। कृष्ण की भक्ति तो रहे दूर, बहुत दूर रहे, बिना कृष्ण की, बिना भगवत भक्तों के, बिना गुरु के कोई भव सागर नहीं तर। इस चीज को गारंटी समझ करके ऐसे ही गुरु की सेवा करो, जिसे वो प्रसन्न होकर के कृष्ण भक्ति जैसी दुर्लभ तुमको चीज दे सके। अपने राम राम करने से, कृष्ण कृष्ण करने से नहीं होगा, जब तक गुरु दीक्षा के माध्यम से कृष्ण सेवा की प्रवृत्ति नहीं देगा, यही भक्ति लता का बीज है। और दे करके क्या करते हैं, उसको पानी देखते हैं, सींचते हैं, रक्षा करते हैं, वही धीरे धीरे बेल होती है, वह बेली ब्रह्मांड को पार करके चली जाती है, वैकुंठ में जाती है, उसको भी पार कर जाती है, रामलोक में जाकर के फिर द्वारका लोक को पार करके मथुरा को पार करके ब्रज में पहुंच जाती है, और कृष्ण के चरणों का आश्रय कर लेकर के फलती फूलती और पकती है, उसमें मीठे मधुर फल लिखते हैं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। और वहीं से टपकता है फल, कहाँ आता है, जहाँ साधक उनकी सेवा कर रहा है इस लोक में, और वही साधक इस पेड़ की लता को अवलंबन करके धीरे 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 इन सब लोगों को पार करता हुआ कहाँ पहुंच जाता है, बोलो वृंदावन में कृष्ण के चरणों का आश्रय कर लेता है। इसके अतिरिक्त तो कोई दूसरा पंथा विद्यते न आयनाय, कोई पथ ही नहीं है दूसरा। इस तरह से रामचंद्र जी विश्वामित्र जी की सेवा कर रहे हैं। सवेरा हुआ, राम और लक्ष्मण दोनों बगीचे में गए, फुलवाड़ी में गए, तुलसी की रामायण बहुत ही सुंदर अलबेला वर्णन है उसमें। जब वहां पर गए फूल चुन रहे थे, इतने में पैरों की पायजेब की नुपुर की ध्वनि निकली, बहुत मीठी मधुर। रामचंद्र जी जो फूल अविष्ट होकर के चुन रहे थे, उनका ध्यान भंग हो गया और फूल तुलते तुलते फूल चयन करना उनका रुक गया। इधर देखा जो नजर जो उधर गई फिर लौटी नहीं, चार नजर, दो नजर थी वो चार नजर हुई। सीता जी ने उसी समय में उनके तरफ में देखा, उन्होंने देखा, इनका मन विवश हो गया। राम ने लक्ष्मण जी से कहा, अब मुझको आत्महत्या करनी है। क्यों भैया आत्महत्या क्यों करनी है? रकुल की ऐसी रीति है जो दूसरी स्त्रियों को मर्यादा देते हुए लड़की को लड़की और दूसरी स्त्रियों को माँ या बेटी या बहन के रूप में देखते हैं। आज हमें जनक नंदिनी को देखा और वो हमारा मन विवश हो गया, उनके तरफ में चला गया, ये तो मैंने बहुत अन्याय किया, हमको मर जाना ही अच्छा है। मैंने कहा कभी यह नहीं हो सकता है, सूरज पूरब की तरफ से पश्चिम में उग जाए, किंतु जब कुल इसका सूर्य वंशियों का चित्त ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा मालूम है विधाता ने आपके लिए ही सीता जी की रचना की है, ऐसा समझिए। देखिए अब आगे क्या होता है। वहां से लौटे गुरु आश्रम में और सीता जी गई, सीता जी का मन चुरा लिया राम ने, राम का चित्त किसने चुराया, उन्होंने चुराया। शाम को सुनैना जी का निमंत्रण आया विश्वामित्र के लिए, आप उन राजकुमारों के साथ में हमारे घर में पधारिए, आप ही पधारिए, यहीं पर हमारा आज निमंत्रण है, हमारे घर में भिक्षा होगी। तो ये विश्वामित्र के लिए निमंत्रण नहीं गया, किसके लिए गया, बड़ी चतुर है ना, राजा की स्त्री है। जनक जी का मैं इस फेर में नहीं पड़ता, तुम जैसा हो तुम निमंत्रण करो, तुम खिलाओ तुम जैसी करो। उनको असल में खिलाना नहीं था, उनको क्या करना था, राम को सीता जी को दर्शन कराना था, जी दिखलाना है, बस बहाने से निमंत्रण किया। सीता जी वहां पर पहले से बना रही थी रसोई इत्यादि, सब लोग राम और लक्ष्मण जी इनके साथ में पहुंचे, ऋषि का चरण धोया और सब वंश पर छिड़का और साथ साथ में प्रसाद पाने के लिए निवेदन किया। कौशल वो सुनैना जी परिवेशन करने लगी, सीता जी भीतर में है, उन्होंने कहा जरा बेटी ले आना तो जरा थाल में, वो सोने के थाल में माल हुआ है उसको ले आओ। तो माता जी क्या आज्ञा का कैसे अवहेला करें, किंतु ज्यों ही आई राम की तरफ में देखा तो हाथ से थाल झन नीचे गिर पड़ी। इसके बाद में दौड़ करके भागी और एकदम भीतर वैरनिवास में चली गई। रामचंद्र जी ने खूब भरपेट आनंद के साथ में भोजन किया। अब 10 बजे ये लोग स्नान स्नान करके फिर तैयार होकर के विश्वामित्र जी ने कहा जरा धनुष को तो देखें। महाराज जनक से कहा महाराज जनक धनुष को ये बच्चे देखना चाहते हैं। तो ये बड़े अफसोस की बात है, मैंने वीर विहीन मही में जाना, अब पृथ्वी में कोई वीर नहीं है, मैं साथ जाना, मैं जानता तो ऐसी प्रतिज्ञा क्यों करता, आज मैं इसके लिए पछताता नहीं। आज जनकपुर के सभी लोग कह रहे हैं कि सीता जी का शादी हो, किंतु अपने वचन से मैं बताऊंगा मैं शादी नहीं कर सकता, ऐसा जानता तो प्रतिज्ञा नहीं करता, और भंग भी कैसे प्रतिज्ञा करूं। बड़े दुख की बात है, जितनी वहां की महिलाएं थी राजा जनक को गाली गलौज करने लगी, ऐसा क्यों तुमने प्रतिज्ञा की, ऐसे सुंदर सुकुमार राजकुमार से सीता जी की शादी, सब प्रतिज्ञा रखो। तो वही जनक जी कह रहे हैं मैं ऐसा जानता तो क्यों मैं ऐसा प्रतिज्ञा करता। लक्ष्मण जी वहां पर बैठे उठ करके खड़े हो गए, सिंह सावक जैसे तम समा करके ओठ फड़फड़ाने लगे, बोले जहां पर सूर्यवंशी कोई भी व्यक्ति हो राजकुमार या कोई भी बच्चा भी हो उसके सामने वीर बहीन मैं ऐसा कहना आपका अनुचित हुआ, अभी चाहूं तो उठ करके खड़े होकर के इस पृथ्वी को गेंद की तरफ आकाश में उड़ा दूं, इसको लेकर के सौ जोजे में दौड़ जाऊं, ये धनुष क्या चीज है, ये तो पुराना धनुष है। लड़कपन हमने ऐसे बहुत सी धनुषियां देखी, ऐसा मत कहिए ये हम लोगों का अपमान है। बड़े प्रसन्न हो गए, उनको तो होना चाहिए ऐसा क्रोध, किंतु क्रोध नहीं हो गया, क्या बड़ा आनंद हुआ, जो मेरी प्रतिज्ञा शायद पूर्ण होने वाली है। विश्वामित्र जी ने राम की तरफ में इशारा किया, वो सिंह सावों की तरफ में सिंह जैसे चलते हैं हिलते हुए उठे और धनुष के पास में पहुंचे, लक्ष्मण जी की तरफ में इशारा किया, लक्ष्मण जी शेष हैं, उनके गुरुत्वाकर्षण शक्ति उनमें, बस अपने पैरों से पृथ्वी को दबा दिया, क्यों धनुष का संपर्क एकदम पृथ्वी से क्या त्रिलोकी से था, त्रिलोकी उठ जाएगी किंतु त्रिलोकी के साथ में धनुष उठेगा ऐसे नहीं उठेगा। इसके पहले रावण आया, कुंभकर्ण आया, देवता लोग आए, राम उठाने लगा रात में, बलि कौन था बाणासुर ने उनको मना किया, खबरदार जाना मत, जाएगा तो क्या होगा, तुम्हारी मट्टी फिली हो जाएगी, मत जाना। किंतु वो माना नहीं, जरा सुना दीजिए तो जरा दे दो,
क्षण मात्र में कब धनुष उठाया और कब धनुष तीन खंडों में विभक्त हो गया, टूट गया, बड़े जोर से सब महाराज जनक बड़े प्रसन्न हुए, रानी आप प्रसन्न हुए, राजकुमार यहाँ प्रसन्न हुए, सीता जी के हाथों में जय माला देवी, सीता जी दुल्हन के रूप में सजी,
सखियां उनको लेकर के चल रही हैं, आनंद के मारे उनके पैर नहीं पड़ते। रामचंद्र जी के निकट में आई, एकदम प्रेम में एकदम विभोर हो गई, हाथ से माला गिरने लग गई, सखियों ने माला के साथ में उनके हाथों को पकड़ लिया और हाथ उठा करके रामचंद्र जी के गले में उतरे। क्या इसके बाद में बारात के लिए महाराज दशरथ को बुलाया गया, दशरथ आए, चारों बेटों में से दो बेटे अभी तो थे वहाँ अयोध्या में, वशिष्ठ जी और बड़ी बड़ी सेनाएं और सब लोग वहां से उपस्थित हुए। उस समय में चारों राजकुमारों की शादी सीता जी से रामचंद्र जी की और उनके भाइयों की एक अपनी पुत्री का विवाह लक्ष्मण जी से और दो और कन्याएं अपने भाई की इस लड़की उनके साथ में शत्रुघ्न और उनको उर्मिला इत्यादि की शादी कर दी। बारात लौट करके जा रही थी उसी समय में बड़ी जोर से आंधी उठी, पेड़ गिरने लग गए, सबके कानों में ताले लग गए, बड़ा भयंकर शब्द हुआ, देखा जाए आकाश मार्ग से उड़ते हुए परशुराम दिया है। परशुराम को देखकर के जितने राजा और महाराज दशरथ भी हृदय कंप गया, राजा जनक को थर रही लग गई, अब क्या हो। 21 बार पृथ्वियों का संहार किया, केवल बेट में जो बच्चे रह गए थे वही बचे थे, ये कहां से आफत आ गई। बड़े अच्छी तरह से सीता जी की शादी फादी हो गई, सब कुछ हो गया और ये अंत समय में ये पहुंचा, नहीं कौन तोड़ा इस धनुष को, क्यों शब्द हुए, यहां पर क्यों लोग आए हैं। विश्वामित्र जी चुपचाप मंद मुस्कान कर रहे हैं, रामचंद्र जी भी निर्भीक बैठे हैं, लक्ष्मण जी भी निर्भीक बैठे हैं और बाकी सब लोग कांपने लगे। मैंने कहा जब भी कोई ऐसा कौन है जो हमारे साथ में आशीष होता कि हमारे गुरु जी का दिया हुआ ये प्राचीन धनुष था, कौन तोड़ा इसको, जल्दी से बोलो नहीं तो ये सभा सबको काट देंगे। लक्ष्मण जी ने राम को प्रणाम किया, बाहर उनको विश्वामित्र जी को उठ करके खड़े हो गए, कुछ तम समा गए, मुख विवर्ण हो गया, लाल हो गया, बोले मैं तो आपको ऋषि समझता था क्योंकि आपके केस सब ऋषि महर्षि जैसे हैं, किंतु आपके हाथों में ये जो है वो फरसा और धनुष बाण और आप ऐसे कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं, मैं बचपन में तो बहुत सी धनुहियां तोड़ डाली है, आपने तो कभी कहा नहीं, ये तो उठाने के समय में ही अपने आप वो टूट करके गिर गई, तीन टुकड़े हो गई, इसमें क्या दोष है, तू बता तुमने तोड़ा या इसने तोड़ा। काजे रामचंद्र जी ने उनको शांत किया, बोले जैसे ये धनुष तो मैंने उठाया किंतु टूट गया पुराना था, इस बच्चे का कोई दोष नहीं है। और बार बार उनको देख करके लक्ष्मण जी को और मारने के लिए उठते हैं और जितना ही क्रोध करते हैं उतना ही उनका वो ईश्वरत्व का जो भाव था सत्यावेश अवतार वो निकल रहा है। उन्होंने बोला जैसे ये छोटा सा बच्चा है इसलिए मैं कुछ नहीं बोलता, नहीं तो इसको भी मार देता। उन्होंने कहा कि यहां पर कोहण बोतिया कोई नहीं, कोहण माने होता है काशी फल, उसके जो बच्चे होते हैं छोटे से लगते हैं वो उसको बतिया कहते हैं भोजपुरी भाषा में, तुलसीदास जी ने भोजपुरी भाषा का भी प्रयोग किया। उसको यदि अंगुली दिखा दो ये बहुत सुंदर हो रहा है फल, तो उसी समय में मुझा करके सूख जाएगा। तो लक्ष्मण जी मैं कोहण का बतिया नहीं हूं, जब तुम्हारे अंगुली देखना चाहिए मैं मर जाऊंगा, यदि मैं आपका ये ऋषि जैसा शरीर नहीं देखता तो मैं दिखला देता जो मैं कौन हूं, यहां पर किस सूर्यवंशी कोई वीर हो वहां पर आपको ऐसी बघारना नहीं चाहिए सेखी। अब तो बड़े लाल हो गए और फरसा उठाया, किंतु फरसा हाथ में से नूते निकलता। बहुत सी और सी बातें हैं, मैं इसको संक्षेप में बतला रहा हूं। राम की तरफ में देखा, विश्वामित्र जी मुस्कुराने लगे, अब उनको समझ में आया जिस जिनकी शक्ति से मैं परशुराम बना हुआ हूं वही तो नहीं है हमारे आराध्य देव, चिंता हुई और उनके हाथ में एक धनुष था नया वज्र से, वो जो दधि की ऋषि थे उनसे तीन चीजें बनी थी, एक वज्र बना और शिष्य से दो धनुष बने थे। एक धनुष को तो तोड़ा इन्होंने और दूसरा धनुष शंकर जी ने उनको दे दिया था, उसको कहा इसको यदि चाप इसकी ये चढ़ा दो प्रत्यंचा तो मैं मान जाऊंगा। हाथ में देते अपने आप वो प्रत्यंचा चढ़ गई, कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। राम ने कहा हमारा ये बाण अमोघ है, मैं धनुष बाण पर इस वजह चढ़ाया है, बाण ये कहीं नहीं कहीं जरूर जाएगा, बतलाओ तुमको तुम्हारे सिर पर छोड़ू ना तुम्हारे कर्म के ऊपर मैं छोड़ू। कहे प्रभु यदि मैं बच जाऊंगा तो फिर तपस्या करके अपनी शक्ति अर्जित कर लूंगा, आपकी भक्ति हो जाएगी, इसलिए हमारे पूर्व पूर्व जो जो कर्म है, कर्म मैंने वहां जो सत्तावीस अवतार है वो शक्ति को आप हरण कर, बस उन्होंने बाण मारा और उनकी शक्ति को हरण करके ले लिया, वो केवल साधारण एक जीव बन गए। अब वो उड़ करके जाते आते थे और जो कि जो शक्ति थी वीरता थी अब वो रही नहीं, उनको प्रणाम करके मंदराचल में चले गए दक्षिण भारत वर्ष में। मंदराचल ना कौन सा याद है, वहीं पर चले कौन सा महेंद्र पर्वत पर चले गए और तपस्या करने लगे, और वो जो बाण उन्होंने छोड़ा उनका वह लेकर के और गिरा थार डेजर्ट में राजस्थान इत्यादि के, वहां एकदम मरुभूमि हो गया। उसी के साथ में सहारा रेगिस्तान है वहां अफ्रीका में, अफ्रीका इत्यादि उसी भाग में वो सब मरुभूमि बन गया। इसके बाद में अयोध्या में लौटे, कैकेयी जी ने बड़ा आवभगत करके अपना कनक भवन उनके लिए दे दिया भगवानी की। कुछ दिन के बाद में महाराज दशरथ को उनके साले ने कैकेयी के पिताजी ने अपने भांजे को अपना नाती को क्या क्या कहते हैं उनको बुलाया, भरत और शत्रुघ्न वहां पर चले गए। वहां पर जब चले गए इधर में प्रजाओं ने कहा रामचंद्र जी का अभिषेक हो, महाराज दर्शन देख बहुत अच्छा, वशिष्ठ से पूछा, उन लोगों ने सब ने कहा कल ही शुभ दिन है कल ही हो, कैकेयी से परामर्श नहीं किया। उधर में दोनों लड़के वहां पर गए हैं और उनको थोड़ा थोड़ा सा स्मरण है क्या राज किसको देना है और कोई उसका साक्षी नहीं है, वो तो है उसके नाना जी ही केवल साक्षी हैं और ये कैकेयी है, इसलिए उन्होंने कहा जल्दी से हो जाए बच्चे वहां पीछे देख लिया जाएगा जो कुछ होगा। इसलिए दूसरे दिन के लिए राज्य अभिषेक किया, समुद्र से और चारों तरफ से पानी आया और यज्ञ इत्यादि की विधियों उनको राज्य अभिषेक की तैयारी हो गई। इतने में मंथरा ने रात की बात जाकर के कैकेयी से कहा, उसने अपने गले का हार उसको दे दिया, इतना शुभ समाचार बतलाया, मैं तो भरत से अधिक राम को प्यार करती हूं। उसने कहा तुम समझती नहीं, आज तुम जिसको तुमको इतना सम्मान है कल नहीं रहेगा, राम राजा होगा उसकी मैया होगी राजमाता और उसकी स्त्री होगी राजरानी और तुमको कोई पूछेगा नहीं, तुम राजा के नौकर की मैया बनेगी। इस तरह से बहुत कुछ सिखाया पढ़ाया, अंत में उनके दो बरियात रहे देवाश्रम संग्राम का, बस भरत आई और महाराज दशरथ से कहा हमको दो वर चाहिए। क्या वर चाहिए, खुशखबरी सुनाने के लिए महाराज दशरथ वहां गए। उन्हें कहा हमको दो वर चाहिए, प्रथम वर से भरत का राज्याभिषेक और दूसरे से राम के लिए 14 वर बनवाए। बहुत समझाया नहीं मानी, अंत में राम को संवाद गया, राम वहां पर आए और उन्होंने पिताजी के आदेश से पिताजी को कहा अच्छा हम बनने जा रहे हैं। कैकेयी ने स्वयं उनके वनवासी वेश बनाए, सीता जी के लिए वनवास के लिए उन्होंने कहा, सीता जी भी और राम भी उनके साथ में जाने के लिए प्रस्तुत हो गए। कैकेयी ने उनके लिए जैसे संतों के वेश होते हैं भगवा वस्त्र इत्यादि वैसे सब प्रस्तुत किए, राम ने बड़े आनंद के साथ में पहन लिया, लक्ष्मण जी के लिए भी आदेश दिया, सीता जी के देने के समय में चुप हो गए। वशिष्ठ ने कहा कुलंगारिनी अपने पति को मारने वाली तुम उसकी लड़की हो, कैके देश की रानी की, तुम्हारी मैया भी ऐसे ही थी, तुम उसी की पुत्री हो तो तुम भी ऐसे ही हो, तुम्हारी मैया ऐसी थी, राजा ने एक दिन स्वप्न देखा और सपने में ऐसा भयंकर था और सपने में आदेश हुआ कि ये सपनों को किसी से मत कहना नहीं तो तुम मारा जाएगा,
दूसरे दिन वो बड़े कुछ चिंतित थे। रानी ने पूछा जब आप चिंतित क्यों हैं? तो एक स्वप्न देखा था, किसी के लिए मना है बनाने बतलाने के लिए, तुम हमसे कहो बतलाओ। वो जीत पकड़ लिया, तुम मरो चाहे बाचो हमको बतलाओ। राजा ने कहा ये बड़ी मुश्किल, मैं मर जाऊं तभी इसको बतलाना पड़ेगा। अपने पुरोहित से पूछा, पुरोहित ने खबरदार मत बतलाइए, इसके सब से सिर के बाल कटवा दीजिए और मुंह को कालिख लगा दीजिए और गधे पर उल्टा बैठा दीजिए और इसको वो लाल लाल फूल कौन सा होता है ना देवी का, वो सब इसको पहना करके और राज से बाहर कर दीजिए, नहीं मानती है तो। उन्होंने ऐसा ही किया, जब नहीं मानी किसी तरह से कहा जाके सुनो नहीं मानती है तो अरे गधा ले आओ इसका सिर मुंडन करो। मुंडन कर दिया गया और लगा दिया, लपेट दिया काली और हंडी चढ़ा दी गई रंग करके और रख करके हंडी बना करके गधे पर बना करके राज से बाहर कर। तुम उसी की लड़की हो, तुम मान नहीं रही हो, अभी मान जाओ नहीं तो खैर नहीं तो पीछे न जाने क्या होगा। किंतु वो मानी नहीं। महाराज दशरथ भी ऐसे थे। अंत में सीता जी ने बलकल तो ले लिए, अब राम के तरफ में देख रही हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने हाथों से उस वस्त्र के ऊपर में वो बलकल लेकर के लगा दिया और तीनों निकल गए। राज्य सुना रह गया, सारी प्रजाएं सब कुछ उनके साथ में चले। पहला दिन उन्होंने पड़ाव किया वो एक नदी के किनारे, वहीं पर राजा था निषाद राज थे, राम के परम भक्त थे। रात में वहीं पर ठहरे, सारी सेनाएं और सब लोग पाने रथ पर चढ़ करके गए थे। जब आधी रात हुई राम ने उनको बुलाया निषाद राज को, अभी गंगा में हमको पार करके उस पार में पहुंचाओ। प्रयाग के सामने सब लोग सो रहे थे, जोगमाया सबको सुला दिया और आधी रात के समय में राम लक्ष्मण सीता गंगा को पार कर रहे हैं। जब नाव में पैर उठाया चढ़ने के लिए तो केवट ने कहा, भाई पहले मैं ऐसे नहीं जान दूंगा, सुनते हैं कि आप बड़े, आपके चरणों की धूली में कुछ ऐसे गुण हैं कि पत्थर को भी वो बना देती है स्त्री, तो हमारी नौका यदि बन जाएगी स्त्री तो मैं कमाऊंगा खाऊंगा कैसे, मैं कदापि ऐसा नहीं करना चाहता, मैं तो आपके चरण धो करके अच्छी तरह से एक धूली का कण नहीं रहे तब छोड़ूंगा। सीता और राम लक्ष्मण तीनों मुस्कुरा दिए, देखो कितना चलाक है, चलाकी के साथ में ये चरणों की धूली को ले रहा है। रामचंद्र जी ने पैर बाहर कर दिए और उसने चरण को मल मल करके धो करके अपने वंश के साथ में पान किया। इसके बाद में नौका में बैठाया, जब नौका में बैठ करके पार होकर गंगा को पार करके प्रयाग की तरफ में आए भरद्वाज ऋषि के आश्रम के सामने, तो सीता जी की तरफ राम ने देखा, हमारे पास में तो कुछ है नहीं किंतु तुम्हारे अंगों में अलंकार है इसलिए ये खाली हाथ जाएगा। तो केवट को उतराई देने लगी सीता जी, अपनी अंगुरी उठाई और उनको देने लगी। केवट कहता है कि देखो हम लोग दोनों बिरादरी के हैं, सजातीय हैं, तुम भी पार करने वाले हो हम भी पार करने वाले हैं, मैं छोटी छोटी नदियों को पार कराता हूँ तुम भव सागर को पार कराने वाले हो, इसलिए भाई मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा, तुम भी जब हम भव सागर में जाएंगे पार होने तब हमको तुम पार कर देना, बस यही रही हमारी। देख करके सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए, कुछ नहीं दिया। इसके बाद में वो चित्रकूट में पहुंचे, चित्रकूट में वाल्मीकि जी से पहले यहां पर मिले थे, इसके बाद में चित्रकूट में पहुंचे, वहां पर अत्रि ऋषि थी, अनुसुईया जी वहां पर थी, कुछ दिन वहीं पर रहे। इधर में भरत जी वहां से, अब वहां पर जब निवास करने लगे भरत जी और शत्रुघ्न जी को निहाल में, जिस दिन राम वन में जा रहे हैं और महाराज भरत ये दशरथ जी हा राम तीसरी बार नहीं निकला, बस प्राण भी छोड़ दिया राम के विरह में। वहां से अब यहां से वशिष्ठ जी ने राजदूत भेजे, राजदूत कहा अभी आज सूरत चलना है। लोग जी क्या हो गया जी क्यों, उनकी बाई आंख फड़कने लगी भरत जी की, कहा जी कोई अशुभ बात हुई है, बतलाता क्यों नहीं जी क्यों, इसलिए महाराज ने बताया। तो वो बुला रहे हैं आपकी मैया के घर में बैठे हैं ये बुला रहे, बस यही जानता हूं और मुझको कोई पता नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा मैं बाहर से बाहर आया हूं। जब चले कौवे कांव कांव करने लगे, गधे रोने लगे, आकाश में उल्कापात होने लगा, पृथ्वी डोलने लग गई,
अयोध्या में जब आए तो देखा अयोध्या में धूल उड़ रही है सुनसान। वो एक विधवा की भांति रूप धारण किया, जो सतवा की भांति में सब समय शोभायमान होती थी, वहां पर धूल उड़ रही। उनका आवागमन करने के लिए, उनको स्वागत करने के लिए कोई भी नहीं आया। जब वो कहीं बाहर जाते थे तो लाखों लोग उनके पीछे जाते थे, आज उनका स्वागत करने के लिए नहीं आया। कुछ क्या बात हो गई? पिताजी दौड़ करके हमको आशीर्वाद देने आते, राम भैया आते थे, लक्ष्मण जी आते थे, ये लोग नहीं आए। कुछ शंका हुई, रथ से उतर गए, ये कहाँ चले? उन्होंने सोचा मैया के घर में होंगे। लोगों ने बतलाया, कोई सी ने बतलाया, चुपके से बतला करके वो हट गए, कोई भी अभिवादन नहीं किया। मैया के घर में गए, वहां जाकर के देखा मैया के तो सिर पर सेंदूर नहीं। क्या हो गया मैया, क्या हो गया? तो बेटा तेरे लिए सब कुछ हुआ। क्या मेरे लिए हुआ? तेरे लिए राज्य के लिए मैंने महाराज दशरथ से मांगा यह राज्य, 14 वर्ष के लिए रामचंद्र जी को वनवास दिया। अरे अरे, हमारा राज्य मांग लेती, राम को वनवास क्यों दिया? मैं ऐसा राज्य नहीं लेता, तू आज से मेरी मैया नहीं। अब जीवन भर में कदाप तुम पुत्र अभिमान मत रखना, आज से मैया का संबंध मैंने तोड़ दिया। रामचंद्र यदि नहीं बिगड़ते तो आज तुम्हें गोटी गोटी काट करके खत्म कर दिया होता। इसलिए राम के डर से कुछ नहीं बोल रहा हूं, अब जाओ यहां से निकलो। शत्रुघ्न जी ने देखा जो मंथरा जी सोने के आभूषण जो कैकेयी ने दिए हैं वो पहन करके आई है, और आगे आगे हाथ से सोने में कंगन लगा दिया है, नहीं तो ऐसे दिखला रही है। उधर चलो, मैंने दिखला रही है हमको कितना आभूषण। महिलाओं का ये शौक होता है ना, और चोर पीछे लगे रहते हैं। बस चोर क्या करते हैं, देख लेते हैं, और जहां यहां किया ना बस यहीं से निकाल लिया, और कपड़े हटा करके थोड़ा सा दिखला रही है, हार इत्यादि तो क्या कर लिया, बकोट लिया, उसके साथ साथ में जो कुछ है वो सब ले लिया। इसलिए तीर्थ यात्रा में आओ, हरि कथा में आओ, तो कैसे आओ? दीन ही निष्किंचन होकर के, कोई न सिकर खैचे न कुछ। इस तरह से मैं कहां चल बोल रहा था, मंथरा दिखा रहे। भरत जी ने देखा, शत्रुघ्न ने देखा, अरे ये तो आभूषण दिख रहा है, आज तो बहुत बनी खनी हुई है, कुब्जा है ये। बस एक लात मारा बड़ी जोर से, वो तो एकदम गिर गई, मुख में मिट्टी आ गया, मरी रे मरी रे, बचाओ रे बचाओ रे। इतने में भरत जी आकर के कहा, अरे भाई स्त्री है, हाथ मत छोड़ो, तो भैया नहीं तो कहीं बिगड़ जाएंगे, इसलिए इसको मारो मत, प्राण से मत मारो। उन्होंने 2-4 और लगा दिए, भरत जी ने किसी प्रकार से छुड़ा दिया। इसके बाद में भरत जी अपनी सारी सेनाओं को लेकर के, सारी माताओं को लेकर के चले, सुमित्रा जी और कैकेयी को लिया, अपनी मैया को छोड़ दिया, क्योंकि संबंध नहीं। कैकेयी के चरणों में गिर पड़ी, कैकेयी कौशल्या जी के चरणों में, बोली जैसे दीदी हमको भी ले चल, मैं बहुत दुखी हूं, मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूं, इस पाप का जो मैंने ऐसा किया, क्यों मैंने ऐसा मांगा मेरी समझ में नहीं आया, तुम ले चलो हमको भी। उनको भी ले लिया, चित्रकूट में ये लोग पहुंचे। लक्ष्मण जी तम तम आए हुए हैं, धनुष बाण निकाला, चढ़ गए अशोक वृक्ष के पर, वहीं से देखा जी भरत भी आ रहा है, सारी सेनाएं हैं, और सूर्य उसके रथ के ऊपर में ध्वजा पड़ते हैं। ये सूर्यवंशियों का, राजाओं का निशान है। मैं कह, ये राम को और हमें मारने के लिए आ रहे हैं, निष्कंटक राज्य हो जाए, ये कैकेयी के तो बेटा है। राम कहें, ऐसा अनर्थ मत करो, अभी देखो परीक्षा करने के बाद में जैसा, अभी थोड़ा सा शांत हो जाओ। उनके कहने से वो शांत हुए। इतने में भरत जी आकर उनके चरणों में गिर गए। पहला उन्होंने कहा कि आप कृपा करके अब लौटिए। उन्होंने, मैं कैसे लौटूं? उस दिन तो रहे, दूसरे दिन महाराज दशरथ का श्राद्ध इत्यादि जो था उन्होंने किया, राम और लक्ष्मण जी ने, भरत जी ने तो पहले कर रखा था। इसके बाद में बड़ी भारी सभा बैठी। कौशल्या के पास में भरत जी गए, मैया मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। बेटा क्या चाहता है? तू एक बार राम से कह दे जो अयोध्या लौट जाए, तुम्हारी बात को टाल नहीं सकते। बेटा मैं ये कैसे कह दूं जो राम लौट जाए? वो तो मर्यादा का एकदम वो पहाड़ है, वो तो कभी नहीं लौट सकता है। और मैं कैसे कहूं जो पिता की आज्ञा को तोड़ करके वो चला जाए? यदि अधर्म की कोई बात होती तो मैं उसको समझा देता, किंतु वो अपने धर्म पर खड़ा है, मैं कैसे कहूं? कहे मैया तुमने उसका पक्ष ले लिया, वही तुम्हारा प्यारा हो गया। मैं तो समझता था कि मैं तुम मेरी मैया हो, और तुमने भी हमको तिरस्कार कर दिया। कहे अच्छा, तो ऐसा करो वशिष्ठ जी के पास मिल जाओ, गुरु जी की बात का उल्लंघन नहीं करो। वशिष्ठ जी के पास में गए, उनसे कहा, उन्होंने कहा मैं कैसे कह दूं राम लौट जाए, मेरे लिए कह दीजिए नहीं तो मैं मर जाऊंगा। कहिए एक बात करो, तुम उनको उनके पास में जाओ, रामचंद्र जी की जो सास हैं सुनैना जी के पास, और उनसे कहो जो राजा जनक से वो कहें वो कोई ना कोई ऐसी बात कर देंगे। तो उन्होंने जाकर के अपने पति से कहा कि ये भरत जी ऐसा चाहता है, आप उसकी रक्षा करें नहीं तो वो मर जाएगा, वो छोटा बच्चा है, किसी प्रकार से राम यदि लौट जाए तो सीता भी लौट जाएगी, हम लोग भी बड़े सुखी हो जाएंगे, वो तो अपना स्वार्थ देख रही थी। वशिष्ठ जी ने कहा इसकी मीमांसा राम ही करेंगे, महाराज जनक करेंगे। बड़ी भारी सभा बैठी, ऋषि मुनि सहस्त्र लोग हजारों लोग बैठे, एक तरफ में राम और लक्ष्मण जी बैठे, दूसरी तरफ में भरत जी बैठे, शत्रुघ्न जी बैठे, राजमाताएं बैठी, वशिष्ठ जी बैठे, सभी पूर्ण। जब सभा हो गई तो इन्होंने अपने गुरु को जनक जी ने प्रणाम किया, कहा जे देखो हमको मध्यस्थ बना रखे हैं वशिष्ठ जी, हमारी राय जो होगी जो फैसला होगा वो दोनों पक्ष मानेगा कि नहीं मानेगा पहले मैं ये सुनना चाहता हूँ। उन्होंने रामचंद्र जी से कहा हमारी राय आप मान्य होगी कि नहीं, आपके लिए फैसला कहे मैं सिर पर अपना आपके फैसले को रखूंगा। भरत जी से और शत्रुघ्न जी से पूछा, भरत जी ने कहा जी आप जो कुछ आदेश देंगे जो कुछ फैसला देंगे हमें मान्य होगा। तब उन्होंने विचार करके कह रहे हैं देखो भाई बात ऐसी है, बहुत गंभीर मामला है, मेरी तो ये राय है, मैं सब प्रकार से विचार किया, रात भर विचार करता रहा, विचार करके मैं इस निर्णय पर आया हूं कि भरत चाहता है कि अयोध्या में चले और राम चाहते हैं कि पिता जगह हम आदेश दें।